तो आदरणीय बीडी राठी साहब ब्रह्मा कुमारी से पिछले 30 वर्षों से ज्यादा से जुड़े हुए हैं, तब से जुड़े हैं जब वो वकील हुआ करते थे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पहुंचे, उसके बाद हाईकोर्ट पहुंचे और उसके बाद 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको डेजिग्नेटेड सीनियर की उपाधि से नवाजा। और राठी साहब का जुडिशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा योगदान ये है कि जो पाप पुण्य सच झूठ और जो हम सोचते हैं, हमें सुनने को मिलता है कि वकील सच को झूठ, झूठ को सच, ये उल्टा सीधा करता रहता है, तो उसके बीच में कैसे फाइन बैलेंस बना के उन्होंने हमेशा कोशिश की कि न्याय कैसे मिले और आने वाला हर फरियादी या वादी प्रतिवादी सब संतुष्ट होके जाए। और नई नई चीजें इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गढ़ी। और आज का जो टॉपिक है आपने देखा भी होगा, सीक्रेट्स ऑफ गीता, गीता के रहस्य के ऊपर चर्चा करेंगे आज भाई साहब। और गीता पढ़ने में जितनी आसान है उतनी ही समझने में मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है जीवन में उसको धारण करना, उसे यूज करना। और भाई साहब के साथ ये विशेषता रही है कि उन्होंने तीनों चीजें करने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक सफल हुए। तो गीता में जो कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ऐसा कैसे हो सकता है? रूटीन में हम फल के वजह से ही कोई कर्म करते हैं। दूसरा कहा जाता है जो कर रहे हो सब भूल जाओ। तीसरा कहते हैं कि समय के हिसाब से अपनी चीजों को ढालते चलो। कई बार समस्याएं ऐसी होती है कि हम समय के उसको ढाल नहीं सकते। तो ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं जिनको भाई साहब ने अपने अनुभव से जाना है, सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट करके न्याय दिलवाया है। तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि कैसे गीता के रहस्यों को हम जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब का पुष्प गुच्छ देके स्वागत करें, बैज लगाएं और तब तक आपके हाथों में थोड़ी एनर्जी आ जाए।
थैंक यू एडवोकेट मनीष भाई, मीठे प्यारे सर्वशक्तिवान बाबा की इस महासभा में विराजमान। आप लोगों को आवाज आ रही है पीछे? आप सभी आत्मीयजनों का, भाग्यशाली आत्माओं का हृदय की गहराइयों से, अंतःकरण से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। आज का विषय बहुत ही सारगर्भित, गंभीर, समय के साथ प्रासंगिक है। आपकी भाग्य की सराहना करे बिना रह नहीं सकता मैं। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं आप, विश्व की इतनी जनसंख्या छोड़ दो, भारत को ही ले लो, उनमें आपको परमात्मा ने हाथ पकड़कर सिलेक्ट किया कि तुम मेरे वो कर्णधार बच्चे हो जो इस दुनिया को नई राह दिखाएंगे। तो मैं आपके भाग्य के लिए करतल धनी करता हूं। श्रीमद् भगवद गीता बहुत सुंदर शब्द। संसार में कई ग्रंथ हैं, अनेक अनेक धर्म के भी अलग अलग ग्रंथ हैं। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो एकमात्र, ओनली एंड ओनली, विश्व की समस्त धर्मों का ग्रंथ है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान भाई हो, जैन, सिख, फारसी, ईसाई, कोई भी धर्म। हम दूसरे ग्रंथों के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है और बाकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, कुरान धर्म ग्रंथ है मुस्लिम भाइयों का, धम्मपद बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बाइबिल हमारे अंग्रेज भाइयों का, ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं दुनिया में, वो केवल और केवल अस्थाई रूप से समय की मांग के अनुसार इस संसार को थामने के लिए द्वापर युग से आए और उन्होंने भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करा और तब उसके कारण सृष्टि अभी तक चलते हुए आई। किंतु अब उनमें भी जान कितनी रही हम देख रहे हैं। सारे संसार में आज झगड़े ही धर्म ग्रंथों के शुरू हो गए हैं। जाति, धर्म, भाषा, तमाम भेदभाव। मैं माफी भी चाहूंगा थोड़ा सा बीच बीच में, धर्म और आध्यात्म में बहुत अंतर है। हम कई बार कंफ्यूज होने के कारण समझ नहीं पाते कि दोनों में क्या अंतर है। आध्यात्म यानी सारी दुनिया का ज्ञान, धर्म एक लिमिटेड ज्ञान, हम कौन हैं, कहां से आए, शरीर छोड़ने के बाद कहां चले जाएंगे, राम कृष्ण दूसरे धर्मगुरु कहां थे, कब आए थे, अभी कहां चले गए, पाप किसको कहते हैं, पुण्य कैसे होता है, तपस्या क्या होती है, पुनर्जन्म कैसे होता है, होता भी नहीं है या होता है, ईश्वर कौन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन आज दुनिया में परमात्मा के परिचय का ही है। इन सब प्रश्नों का, कर्मों की फिलॉसफी क्या है, जो बहुत सटीक, जो सारी समस्याओं का बहुत सरल और सही तरीके से निदान बता दे, वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन यह बात धर्म के लिए लागू नहीं होती। वहां कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवाद अवश्य होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता भारतवर्ष का हमें फक्र है कि हमारे देश की धरोहर है, जिसके कारण यह देश और हम लोग विश्व के गुरु हैं। और अभी वो समय बहुत नजदीक है जब चारों ओर विश्व से लोग दौड़ दौड़ कर आपके पास आएंगे, बहुत जल्दी, अतिशीघ्र। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जो मां भी है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता हमें संस्कार प्रदान करती है, जो मां का ही काम है। श्रीमद् भगवद गीता दुनिया के समस्त धर्मों की जननी है, उसी से सब धर्म उत्पन्न हुए हैं। जैसे संस्कार किसको कहते हैं, यदि दो व्यक्ति हैं, तुम भी खाओ हम भी खाएं, ये प्रकृति है, और किसी का हक छीन लो फिर खाओ, ये विकृति है, किंतु पहले आप फिर मैं, ये संस्कृति है। तो यह संस्कृति, यह सभ्यता आध्यात्म सिखाती है, और वो है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता एक बार का वाक्य है, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए, यही महीना चल रहा था, 11 सितंबर की बात है 1893, और उस धर्म संसद में जब उनका लेक्चर हुआ, बहुत कम समय मिला था उनको, इतने कम समय में हमारे देश का जो नाम रोशन करा, सारा पाश्चात्य सभ्यता देखती रह गई, पर फिर भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी स्वामी जी का अपमान करने के लिए। एक वाक्य हुआ उस धर्म संसद में, जैसे ही स्वामी जी बोले कि श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कुछ लोग खड़े हुए और कहा, क्यों झूठ बोलते हो, आपकी श्रीमद् भगवद गीता तो सबसे नीचे रखी है और सब तमाम धर्म ग्रंथ ऊपर रख दिए उन्होंने और सबसे ऊपर बाइबिल रख दी। बोले कहाँ आपकी गीता सबसे अच्छी, वो तो सबसे नीचे है। स्वामी जी बड़े स्वाभिमान से मुस्कुराए और खूब करतल ध्वनि करते हुए सारी सभा का उन्होंने बहुत थैंक्स कहा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बढ़ा, मान बढ़ाया। लोग आश्चर्य करने लगे, ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं ये। फिर स्वामी जी गए, उन्होंने पुस्तक की जो लंबी लाइन थी उसमें धीरे से श्रीमद् भगवद गीता को खींचा और जैसे ही खींचा सारे धर्म ग्रंथ नीचे गिर पड़े। तब लोगों को समझ में आया कि सचमुच श्रीमद् भगवद गीता समस्त धर्म ग्रंथों की जड़ है, नींव है, मूल है। अब कई बार क्या कंफ्यूजन पैदा हुआ जिसके कारण पिछड़ गए लोग। कौरव और पांडव का इतना बड़ा 18 अक्षौणी सेना का युद्ध दर्शाया। जो हम शरीर के विवेकशील लोग हैं, तर्क के बिना न मानते हैं न मानने देते कोर्ट में। बोले यदि परमात्मा को भी हिंसक युद्ध ही सिखाना है तो फिर परमात्मा की जरूरत क्या, हमको सब पता है 323 क्या होती है और 26 क्या होती है और 307 क्या होता है, ईश्वर को आने की क्या दरकार है। ऐसी कई बातें हैं जिसको अपन कोशिश करेंगे कि हम एक्सप्लेन करें आपस में। दुनिया के कैसे धर्म निकले, तो पांडव और कौरव के युद्ध के वृतांत को लेकर के बाइबिल में उससे जो ज्ञान उठाया उसमें कहा गया कि शैतान और फरिश्ते का युद्ध हुआ। फिर मुस्लिम लोगों ने उसी हमारी श्रीमद् भगवद गीता में से कुछ चीज उठाई और कहा जिहाद हुआ धर्म के लिए, जिसका विकृत रूप लव जिहाद और दुनिया भर का कितना नाटक हो गया। कुछ समझदार ज्ञानी पुरुष उन्होंने कहा कि इससे तो समाज में, देश में, विश्व में हिंसा फैलेगी, तो उन्होंने दूसरी कुछ सारगर्भित चीजें उसी में से निकाली श्रीमद् भगवद गीता से। और जैन समाज ने जय जिनेन्द्र करके इंद्रियों पर जीत कैसे पाई जाए ये वाली बात उठा ली। धम्मपद बौद्ध धर्म वालों ने उसी में से ये बात उठाई कि नहीं, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि कर्मों की फिलॉसफी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने कर्मों की फिलॉसफी जो श्रीमद् भगवद गीता में है उसको उठाया और अपने धर्म ग्रंथ धम्मपद में उसको स्थान दिया। गुरु नानक साहब आए, उन्होंने कहा कि इसमें तो सबसे अच्छी बात यह है कि मन को मित्र बनाओ, तो मन जीते जगत जीत, और ये भी श्रीमद् भगवद गीता का ही अंश है, उसको उठाया और उन्होंने अपने धर्म में वो प्रचार किया। ऐसे अलग अलग जितनी भी महान आत्माएं आई, डिवाइन सोल्स आई, संत महात्मा आए, सब ने श्रीमद् भगवद गीता से ही ज्ञान उठाकर अपने अपने धर्मों के लिए धर्म ग्रंथों की रचना की। एक बहुत खूबसूरत बात, सारे धर्म ग्रंथ जो साधु संत सन्यासी ने लिखे, किंतु श्रीमद् भगवद गीता यह वह मधुर गीत है, वो डिवाइन सॉन्ग है जो स्वयं परमात्मा ने गाया है हम बच्चों के लिए, ताकि उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं से ये सारा स्वर्ग पुनः स्वर्ग बन जाए। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले चार लोगों को प्राप्त हुआ, जिसमें सबसे पहले थे महर्षि वेदव्यास, साधना करते थे और जब वे साधना में बैठते थे तो परमात्मा उनको श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देते थे। फिर यही ज्ञान अर्जुन को प्राप्त हुआ, फिर वही ज्ञान संजय को मिला और वही ज्ञान फिर भीष्म पितामह को मिला। धृतराष्ट्र की बात नहीं कर रहा मैं, भीष्म पितामह। एक बार हम तक कैसे पहुंचा ये परमात्मा का ज्ञान दुनिया वालों के लिए, तो महर्षि वेदव्यास तपस्या में बैठे थे और परमात्मा ने उनको इतनी अनूठी शिक्षा का वरदान दिया, उनकी निद्रा जब जागी योग निद्रा, तो कलम और पत्र लेकर बैठे कि इतना सुंदर ज्ञान मैं क्यों न जन जन तक पहुंचाऊं, और वे लिखने बैठे। थोड़ा लिखा तो उनको लगा कहीं ना कहीं मैं विस्मृत भी हो रहा हूं, तो उन्हें लगा कि यह अधूरा ज्ञान सारे विश्व की जनता तक पहुंचाना तो उचित नहीं है, अधूरे ज्ञान से कैसे काम चलेगा। फिर साधना में बैठे, फिर परमात्मा को याद किया और कहा है प्रभु आपका इतना ऊंचा सुंदर ज्ञान मैं कैसे आधा अधूरा जन जन तक पहुंचाऊं। तब परमात्मा ने कहा कि तुम बच्चे बुद्धि के देवता अगर श्री गणेश को याद करो। तब उन्होंने गणनायक श्री गणेश का आह्वान किया, प्रकट हुए। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि मैं आपके द्वारा कही हर बात लेखन करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि आप कंटिन्यू बोलोगे, यदि आपने ब्रेक करा तो मैं चला जाऊंगा। वेदव्यास जी ने कहा हे भगवान ठीक बात है, मैं ऐसा ही करूंगा, किंतु मेरी भी एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी बोलूं उसको आप समझ करके लिखना। गणेश जी तैयार हो गए और फिर वहां कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता की रचना प्रारंभ हुई। परमात्मा ज्ञान देते थे, वेदव्यास बोलते थे और गणेश जी लेखनबद्ध करते थे। ये मिथ नहीं है, महाभारत में 18 पर्व है, श्रीमद् भगवद गीता अलग चीज है, महाभारत अलग ग्रंथ है। उसके आदि पर्व में 77वां श्लोक है, 77, उसमें स्पष्ट वर्णन आता है, आप पढ़िएगा कभी घर जाएं तब, कि वेदव्यास जी ने सोचा कि श्रीमद् भगवद गीता का इतना उच्च क्वालिटी का ज्ञान एज इट इज में पहुंचाऊंगा तो शायद रमणीक न लगे, शायद लोग अडॉप्ट नहीं कर पाए, शायद लोग उसको एक्टिवेट नहीं कर पाए जीवन में, फिर क्या करना। तो उन्होंने 77वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है गणेश जी ने, कि तब वेदव्यास जी ने कहा कि मैं इसको प्रैक्टिकल रूप में रखूंगा, अपने मन के कई भावों को कथानक के रूप में जोड़ करके श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान पहुंचाऊंगा। माना जो कुछ भी भगवद गीता उपलब्ध है उसमें गीता का तो सारा ज्ञान है ही है जो परमात्मा ने दिया, किंतु समझाने के दृष्टिकोण से वेदव्यास जी ने अपने मन की बातें भी रखी और ऐसा सरल बनाने का प्रयास किया जिससे वह ज्ञान हम लोगों को इजीली समझ में आए। ये आदि पर्व के 77वें श्लोक में इसका वर्णन है। अब बुद्धि के देवता गणेश जी बैठे और लिखे और जैसे ही पहली बार शुरू करी वेदव्यास जी ने, वहीं गणेश जी को चक्कर आ गए। उन्होंने कहा, है धृतराष्ट्र बोलते हैं संजय से, संजय कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है यह वृतांत हमें सुनाओ। संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था, वो कहीं भी बैठ कर देख करके मैसेज पहुंचा सकते थे। और पहला वाक्य आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जैसे ही गणेश जी ने सुना तो उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र में, कुरु यानी कुरुक्षेत्र ने जहां युद्ध का मैदान हो, कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र का क्या स्थान, जहां युद्ध होने वाला है, इतना भयंकर युद्ध होने वाला है, महाभारत होने वाली है, इतने शंखनाद हो रहे हैं, वहां धर्म का क्या काम है। तो गणेश जी को भी समझ में नहीं आया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये शब्द कैसे। इसी कंफ्यूजन को हम धीरे धीरे समझेंगे कि इसमें सत्यता क्या है। कुरुक्षेत्र यानी यह हमारा शरीर, जिसको क्षेत्र भी कहते हैं, और इसमें विराजमान जो आत्मा है वह धर्म स्वरूप, धर्म क्षेत्र है उसका। तो जब इस शरीर में बैठकर द्वंद्व चलता है धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के बीच में, उसी बात को एक्सप्लेन महर्षि वेदव्यास ने अपने शब्दों में करने का प्रयास किया था, जो कालांतर में कठिन होता गया और लोग उसको समझने में कठिनाई महसूस करने लगे। आगे चले तो आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारा मोटिवेशन है। जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं दुनिया में, आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, सुनना किसी को भी, कोई भी हो, उसमें सदैव स्पिरिचुअल इनपुट होता ही होता है। बिना स्पिरिचुअल इनपुट के कोई भी मोटिवेशनल स्पीच पूरा नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता हमें मोटिवेट करती है, हमें जीवन का सार समझाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, हमें स्वर्ग में कैसे जाना है, श्रेष्ठ कर्म किसे कहते हैं, कैसे होते हैं, वो सब सिखलाती है। दुनिया की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी, जिसका समाधान श्रीमद् भगवद गीता में नहीं हो। महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा कि जब भी मैं किसी राष्ट्रीय समस्या में डूबता हूं, तब श्रीमद् भगवद गीता का कोई भी पन्ना पलटकर बैठ जाता हूं। जब उसका अध्ययन करता हूं तो मुझे उस समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है। एक अमेरिकन संत हुए हेनरी थोरो, ये बात है 1817 से लेकर 1862 की। हेनरी थोरे नाम के उस अमेरिकन संत ने दुनिया के सारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सारे देशों विदेशों में जा जा करके अध्ययन किया। वे जब भारत आए तो उन्होंने जैसा नाम सुना था श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन किया, और एक दिन वो सिर पर गीता जी को रखकर नाचने लगे तो लोगों ने देखा और कहा कि थोरे साहब, आप कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, आप श्रीमद् भगवद गीता को सिर पर रखकर नाच रहे हैं। बोले, नहीं, अब जाकर के मुझे सारी जिंदगी की तपस्या का फल मिला और यह एकमात्र ग्रंथ भारतवर्ष का आध्यात्मिक जिसमें दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो। से 5000 वर्ष पहले की बात है ये, अभी ध्यान होगा आपको, 5160वीं जयंती श्रीमद् भगवद गीता की गई, 150 की गणना इधर उधर हो सकती है। तो 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास के माध्यम से परमात्मा ने जिस श्रीमद् भगवद गीता की रचना करी, उस समय आदि पर्व के महाभारत के 77वें श्लोक के अनुसार उनने जो अपनी कल्पनाओं से आपको ठीक से समझ में आए, तब यह कल्पना कर ली थी कि 5000 वर्ष के बाद एक ऐसा समय दुनिया में आएगा जहां घर घर हर व्यक्ति अपनी समस्या से, अपने ही द्वंद से, आपसी रिलेशन से, संपत्ति को लेकर के और कई प्रकार की बातों को लेकर के द्वंद करेगा, अशांति छा जाएगी। सामाजिक स्तर पर देखेंगे तो कई धर्म भाषाओं के झगड़े खड़े हो जाएंगे, राष्ट्र के स्तर पर देखेंगे तो अब देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी कुर्सी नहीं छूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं राजनीतिक बात तो नहीं करता और न किसी दल से मेरा कोई लेना देना नहीं है, किंतु समझने के लिए एक बार हमारी ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मेडिकल विंग के तहत एक प्रोग्राम था और लोगों को समझाया कि नशा खराब चीज है, छोड़ना चाहिए। तो वो कुछ लोग बोले कि आप देशद्रोही बात कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको कि भाई कैसे देशद्रोही हो गई ये बात। बोले हमारी सरकार तो लाइसेंस दे करके हमारे घर के पास में ही दुकानें खुलवा रही है और आप उसी का विरोध कर रहे हो। यानी आप सोचिए, जिस देश का राजा अपनी प्रजा को विद्या का दान न दे, उनके लिए रहने की सुविधाएं नहीं दे, उनके लिए अच्छी सड़कें नहीं बनाए, अब तो एक्सेप्शन है, प्याऊ नहीं खुले। हम सब जब पढ़ते थे तो निबंध और सम्राट अशोक और सब पढ़ते थे, यही सब बातें होती थी। और आज दारू, गांजा, भांग, चरस और फिर ऊपर से बेरोजगारी के भत्ते, ऐसे नहीं ठल्ले बना दिए गए हैं सब, क्या बताएं, समय की विडंबना है। तो ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या की बात बता रहा था मैं, कोई सरकार या दल विशेष नहीं, सबकी स्थिति यही है, कमोबेश भारतवर्ष की भी नहीं सारे विश्व की यही स्थिति है। यूक्रेन, कल मैंने निवेदन करा था, 930 दिनों से ऊपर युद्ध, सोचिए आप क्या तमाशा है। लोगों को खाना क्यों नहीं मिल रहा, शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और तुमको लड़ने से फुर्सत नहीं, अरबों खरबों रुपए मिसाइल्स में, बॉम्ब्स में, कितने मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। इजराइल का देखिए आप, क्या है, क्या होगा इस विश्व का। मैं पुनः आपके भाग्य की तारीफ करूंगा कि देखो परमात्मा ने चुना है आपको, इसको बहुत गंभीरता से लेना, बिल्कुल सरलता से मत लेना। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी परमात्मा ने दी है कि जाएं, अपना भी मार्ग प्रशस्त करें और विश्व का भी मार्ग प्रशस्त करें। तो ये जितनी समस्याएं हैं, आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास ने अपनी श्रीमद् भगवद गीता की उस रचना में श्री गणेश जी के माध्यम से लिखी कि कैसे कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र होने वाला है। आप देखिए, शकुनी महाभारत में एक पात्र था और आज कितने शकुनी है समाज में, सोचिए। आज देखिए 5000 वर्ष पहले महर्षि की कल्पना देखिए आप, गांधारी, अच्छी खासी ज्योति परमात्मा ने दी थी उसको, उसके पति धृतराष्ट्र अंधे थे। आप सोचिए जरा, विवेक पूर्ण तरीके से सोचिए कि यदि किसी का पति या पत्नी अंधा हो जाए तो लाइफ पार्टनर का क्या कर्तव्य बनता है कि उसको गाइड करे, उसका मार्ग प्रशस्त करे। किंतु यहां 5000 वर्ष पहले उन्होंने सीन देखा, महर्षि वेदव्यास ने, कि दुनिया में क्या होने वाला है, और उन्होंने उस गांधारी को भी पट्टी बंधवा दी। मना धृतराष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करना तो दूर, आज घर घर देखिए आप, महिलाओं को मालूम है कि हमारे हस्बैंड ये काम गलत कर रहे हैं। उनकी कंप्लेंट जब पहुंचती है कि बहन जी देखिए ना आपके पति, अच्छा हमको तो पता ही नहीं ऐसा भी है, जबकि उसको सब पता है, अब वो क्यों नहीं बोल पाती पता नहीं। तो घर घर गांधारी, ये 5000 वर्ष पहले कल्पना करी थी। आप सोचिए, उनको पता था कि 5000 वर्ष के पश्चात ईश्वर की क्या हालत होगी। दुर्योधन, चाहे 5 गांव की बात तो छोड़ो, 1 इंच जगह नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, सर्वस्व नाश हो जाए, पर इन पांडु पुत्रों को 1 इंच जगह भी नहीं दूंगा। क्या यह स्थिति आज घर घर नहीं है, भाइयों में, बहनों में, आपस में, संबंधियों में, सब यही विवाद है। ये 5000 वर्ष पहले की कल्पना, महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में बहुत अच्छा लिखा है। तो इन सारी समस्याओं को, एक नास्त्रोदमस का आपने नाम सुना, उन्हें भविष्यवाणियां लिखी। जगदीश्वर दक्षिण अपने ईस्ट में, वहां के कई संतों ने भविष्यवाणियां लिखी, भविष्य मालिका वगैरह, सबने ये तो बताया कि क्या होने वाला है, क्या समस्याएं आएंगी, किंतु किसी ने समाधान नहीं दिया है। हम धन्य हैं कि हमारे देश के इस आध्यात्मिक ग्रंथ में न केवल समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि उसका समाधान भी उसमें है। सामाजिक, गृहस्थ, प्रादेशिक, राज्य स्तरीय, विश्व स्तरीय, ऐसी जब भी समस्या आएगी, श्रीमद् भगवत गीता में कहा परमात्मा ने, मेरे बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करना, यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मश तदात्मानाम सजम्यम। बच्चों बिल्कुल चिंता नहीं करना, जब भी ऐसा आएगा ना संकट, तुम मेरे बच्चे हो, और बाप अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख सकता, इसलिए समय समय पर परमात्मा दिव्य रूप से आकर के हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। और वो सब बातें श्रीमद् भगवद गीता में हैं, मैं आपको शेयर करूंगा। एक और देखिए आप, कि कोई भी माता पिता दुनिया में अपने बच्चों के नाम कितने सिलेक्ट करके रखता है। महाभारत में महर्षि की कल्पना देखिए, समय के अनुसार जब समय आएगा तो कैसे लोग रहेंगे। अधिकतम पात्र 100 करोड़ थे, और सब पात्रों का नाम दू से शुरू होता है, दुख देने वाला। दुर्योधन धन का दुरुपयोग करे, दुशासन शासन का दुरुपयोग करे, दुर्मुख, कभी ठीक से बोले ही नहीं, दुर्वाणी, दुर्वचन, ये सब कौरव के पात्र के नाम है। एक और नाम है उसमें, उनकी एक बहन थी दुस्सिला, जिसका शील और चरित्र समाप्त हो गया था। आप देखिए आज समाज का, सारे विश्व के समाज को लेके चल रहे हैं हम, केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, क्या हालत है। पांडव कितने थे? 5%। आज दुनिया में देखिए, हम एक कंपेयर करें कमोवेश, तो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रीत बुद्धि हैं, परमात्मा में जिसका विश्वास है, 5%। युधिष्ठिर स्टेबल माइंड हो, कितने लोग हैं जिसका माइंड स्टेबल रहता है कैसी ही परिस्थिति आ जाए। युधिष्ठिर, भीम विल पावर, किसी के बाप से नहीं डरता था, वो निर्भीक। आज हम न्यायाधीशों को देखें, एडवोकेट्स को देखें, हमारे क्षेत्र में क्या स्थिति है, छोटी छोटी बातों से भयभीत होकर हम न्याय से वंचित हो जाते हैं, न्याय नहीं करते, और बेचारा पक्षकार रोते हुए घर चला जाता है। विल पावर, भीम, अर्जुन, जो ज्ञान का अर्जन करे, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं दुनिया में जिनको ज्ञान में प्रीत होती है, परमात्मा में प्रीत रखता हो, जो नुकुल, जो नियमों पर चले, 1%। सहदेव, जो सबको सहयोग करे। एक इंदौर में पलाशा क्षेत्र है, वहां एक बोर्ड लगा हुआ है मजार पे, मैं जब मेरी निगाह जाती है, निकलता हूं तो पढ़ता हूं मैं, अच्छा लगता है कि दूसरों का सहयोग करते चलो, एक दिन बड़े आदमी बन जाओगे। तो ऐसे सहदेव कितने? 1%। आज तो कैसे सहदेव हैं? एक कमरा बनाएंगे, बोले मार्बल पे पहले मेरा नाम लिखो, उसके बाद कमरे के पैसे मिलेंगे। नाम चाहता है आदमी। तो ये जो कथानक लिखा गया महर्षि वेदव्यास ने मन की कल्पना से श्रीमद् भगवद गीता, वो केवल हमें समझाने के लिए, पर वास्तव में क्या ऐसा युद्ध, ऐसी विभीषिका हुई थी? और परमात्मा भी यदि हिंसक युद्ध सिखाए तो क्या काम है परमात्मा का? हम ही खुद सफिशियंट है हर प्रकार का क्रिमिनल करने के लिए, क्राइम करने के लिए, ऑफेंस करने के लिए, क्या जरूरत है उनकी? नहीं। एक और बात होती है, हमारे देश के महामहिम दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पे मानसा लिख करके एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, महाभारत। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ऐसा हिंसक युद्ध तो हो ही नहीं सकता, ये केवल परिकल्पनाएं हैं समझाने के दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं हो सकता है, हिंसक युद्ध नहीं हो सकता है। एक और बात, ऐसा कहा जाता है कि हरियाणा राज्य के एक स्थान है कुरुक्षेत्र, और वहां थानेश्वर महादेव का मंदिर है, मुझे भी जाने का काम पड़ा। वहीं पास में जलेसर करके ज्योतिसर तालाब है, और कहा जाता है कि इस तालाब के किनारे महाभारत का युद्ध हुआ था। एक वृक्ष है, रथ बना हुआ है, गांडीव धनुष रखा है, और उसका चित्रण किया गया है कि कैसे, बहुत बड़ा मैदान नहीं है। मैं ये नहीं कहता, ना इस विवाद में पढ़ना चाहता हूं कि धुआं हुआ था कि नहीं हुआ था, अलग बात है, हम तो केवल चिंतन कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में 18 अक्षौणी सेनाएं थी, 11 अक्षौणी सेना कौरव की थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। महाभारत काल में जो इकाई चलती थी, वो थी पत्ती, जैसे नहीं होता 10 ग्राम का एक तोला ऐसे, तो पत्ती पत्ती करके एक इकाई थी। एक पत्ती बराबर था एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार। ऐसे 3 पत्ती करो, उनको 3 गुना करिए तो एक मैं आपको लिखाता हूं, लिखिएगा वैसे कुछ गलत नहीं हो इसलिए देख के वो फार्मूला लिखाता हूं, आप उसको देखिए कैलकुलेट करिए, बहुत अच्छा फार्मूला है। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े बराबर 1 पत्ती। ऐसी जब 3 पत्ती हो तो 3 रथ, 3 हाथी, 15 पैदल सैनिक और 9 घोड़े, तो उसको एक सेनामुख कहा जाता था। तो 3 पत्ती बराबर 1 सेनामुख, और इसी क्रम से आगे चलें तो 3 सेनामुख बराबर 1 गुल्म, फिर 3 गुल्म बराबर 1 गण, फिर 3 गण बराबर 1 वाहिनी, और 3 वाहिनी यानी 1 प्रतना, और 3 प्रतना यानी 1 चमु, और 3 चमु बराबर 1 अनिकनी, और 10 अनिकनी के बराबर 1 अक्षोणी, और 1 अक्षोणी में होते थे 21,870 रथ, 21,870 हाथी। 2 मिनट पापा को याद करें। एक अक्षोणी में 21,870 रथ होते थे, ये आपको नेट पे भी मिल जाएगा, पुराना फार्मूला है ये। 21,870 हाथी होते थे, 109,350 पैदल सैनिक होते थे, 65,610 घोड़े, ऐसे कुल मिलाकर करीब 2,20,000 के करीब एक अक्षौणी सेना में संख्या हुआ करती थी। इसको 18 से मल्टीप्लाई करिए, करीब 47 लाख लोग की सेना थी। अब आप देखिए, ये 47 लाख तो 18 अक्षौणी सेना की बात करी, पर इनको मेडिकल एड देने वाले भी होते होंगे, इनका भोजन बनाने वाले भी होते होंगे, भोजन परोसने वाले भी होते होंगे। रात को जब युद्ध विराम होता था तो उनके कैंप के आगे वॉचमैन भी रहते होंगे, और ऐसे उनको नहलाना, श्रृंगार करना आदि आदि, ऐसे कितने मिसलिनियस वर्क, यानी 18 अक्षौणी सेना में आप सोचिए लाखों की तादाद में वहां उस मैदान में इकट्ठे हुए। अब जब वो लड़ते थे तो उनको स्पेस भी चाहिए, इधर से दौड़ के जा रहे हैं, उधर से दौड़ के आ रहे हैं, कितनी जगह चाहिए। तो ये चिंतन का विषय है कि क्या कोई ऐसा युद्ध, ये महर्षि वेदव्यास ने कल्पना की थी 5,000 वर्ष पहले कि घर घर कुरुक्षेत्र बन जाएगा और वहां इस प्रकार का युद्ध रोज होगा। अब देखिए, समय तो परमिट नहीं कर रहा, मुझे बात बहुत करना है आपसे, करूंगा मैं। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके पहले उस शकुनी मामा ने समझाया इसको, दुर्योधन को, कि तू जा श्री कृष्ण के पास, उसके बिना गति नहीं है तेरी, और उसको मांग के ला कि युद्ध में तुम हमारी तरफ से लड़ना। अर्जुन भी गया, दोनों पहुंचे, श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। अहंकार को देखिए आप, आज दुनिया में जो लोग हैं, किन्होंने सत्य का मुखौटा पहना, कितने परसेंट है? 5%। बाकी सब लोगों ने आर्टिफिशियल, डुप्लीकेट, धोखा देने के मुखौटे लगा रखे हैं। हम 5% में ध्यान रहे, क्योंकि 100% वाले जो लोग हैं ना, वो उनकी किस्मत में ये ज्ञान सुनना लिखा ही नहीं है, केवल हम 5% लोगों में। तो नेगेटिव मुखोटे वाले लोग, दुर्योधन जैसे, जब श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और पहुंचे, अर्जुन उनके पैरों पर विनम्रतापूर्वक खड़ा हो गया कि जब भी प्रभु उठेंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। और कौरव की तरफ से दुर्योधन अहंकार में नेगेटिव मुखोटा लगा करके सिर पर बैठ गया अहंकार। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो सबसे पहले निगाह गई चरणों पे, अर्जुन कब आए? और जैसे ही ये कहा तो दुर्योधन का अहंकार बोलता है कि पहले मुझसे कहिए, मैं पहले आया हूं। नेगेटिव अहंकार के लोग ऐसे ही बलपूर्वक अपना अधिकार मांगते हैं आज, चाहे उनका अधिकार नहीं हो पर बलपूर्वक मांगते हैं। समाज की स्थिति ये हो गई है। तो अर्जुन बोला कि भाई साहब, आप पहले आप मांग लो, मैं बाद में मांग लूंगा। जैसे ही कहा, अब वहीं देखिए आप कि श्री कृष्ण को ऐसे देखना पड़ा तो उसकी निगाहें तो वहीं टेढ़ी हो गई दुर्योधन के प्रति, वहीं से उसकी हार शुरू हो गई। उसने कहा, देखो दुर्योधन, तुम क्यों आए हो? दोनों का मंतव्य मैं जानता हूं, ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज और काउंसलिंग के सब कार्यक्रम पहले हो चुके थे, निष्फल रहे, तब ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, आपको सबको पता है, विद्वजन है। तो कहा कि देखो, एक तरफ मेरी सारी सेना रहेगी नारायणी सेना, युद्ध करेगी, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहेगी। दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा और अकेला रहकर भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, केवल रथ हाँकूंगा। अब तुम पसंद करो, मैं चलूं या मेरी अक्षौणी सेना। शकुनि ने इसको समझा के भेजा था कि श्री कृष्ण बहुत चतुर है, बड़ा कूटनीतिज्ञ। आपको एक बात बताऊं कि श्री कृष्ण जैसा चरित्र राजनीति में हो, कूटनीति में हो, धर्मनीति में हो, आध्यात्मिक किसी में भी, हरेक में पारंगत, 16 कला संपूर्ण, उस जैसी श्रेष्ठ रचना दुनिया में न हुई न होगी। तो शकुनि ने समझा के भेजा तब भी इस दुर्गति को समझ में नहीं आई। उसने कहा कि जब ये कुछ करेगा ही नहीं वहां, तो इसको मांगने से मतलब क्या है, और इसको खाना खिलाओ। तो उन्होंने कहा आप तो अपनी अक्षौणी सेना मुझे दे दो। श्री कृष्ण ने कहा तथास्तु, मेरी अक्षौणी सेना तुम्हारी तरफ से लड़ेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हो, मेरे पास सब कुछ है, प्रीत बुद्धि। और ये दुर्योधन की विपरीत बुद्धि जो 100% लोगों की आज हमने कल्पना करी महर्षि वेदव्यास जी ने। वहीं हार सुनिश्चित कर ली। आप सोचिए कि अक्षौणी सेना का पालनहार श्री नारायण आप कोई भी सेना सामने मालिक खड़ा हो लड़ेगी उसके खिलाफ, वहीं हार निश्चित। किंतु अहंकार दुर्योधन का, तो ऐसी ये कहानियां इसमें लिखी हुई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, हम उनमें देखें तो आप देखिए, जय पराजय, यश अपयश, हानि लाभ, जीवन मरण, मान अपमान, सब में जो एक समान स्थिति में रहता है वही योगी होता है। उसी का जीवन सार्थक, सुखी, शांतमय, आनंदमय होता है। श्रीमद् भगवद गीता कैसे हमें बैलेंस लाइफ जीना है इस बात की आर्ट सिखाती है। आपने 3-4 दिनों में बहुत लेसन सुने होंगे, और नहीं तो आप जहां अपने स्थान पर पहुंचे तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के तमाम सेवा केंद्र आपके घरों के आसपास हैं, संपर्क करिए, निशुल्क व्यवस्थाएं हैं सब। थोड़ा सा आप समय दीजिए, आपको बहुत अच्छे से हमारी प्यारी मीठी बहनें उस ज्ञान को आपके चिंतन में लाएंगी और सिखाएंगी। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी माधुर्यता आती है, कितना आनंद आता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में सांख्य योग का वर्णन किया गया है, अर्थात ज्ञान योग, यानी तुम कौन हो। आपने जाना भी होगा कि मैं कौन हूं, बोले पक्का, जिनको पक्का है कि मैं आत्मा हूं वह हाथ उठाएं, गुड। थोड़ा हास्य विनोद करते हैं, ये चिंतन का विषय है कि मैं चैतन्य आत्मा हूं, किंतु रात के अंधेरे में मैं मिल जाऊं और आपसे पूछूं या आप पूछो और मैं बोलूं मैं आत्मा हूं, यह हास्य। बाकी तो हम चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्माएं हैं जो इस शरीर में बैठकर पार्ट प्ले करती हैं, जिसकी नेचुरल क्वालिटीज हैं वो भी आपने सब सुनी, ज्ञान, योग, साधना, आनंद, प्रेम, पवित्रता, दिव्यता, खुशी। ये सिर्फ आत्मा, शरीर के धर्म नहीं है। शरीर के धर्म में विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब शरीर के हैं। सांख्य योग अध्याय दो, अध्याय चार बहुत महत्वपूर्ण, उसमें लिखा अर्जुन यह ज्ञान मैं पहली बार नहीं दे रहा। सबसे पहले जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो सूर्य ने मनु को दिया, फिर मनु ने इच्छावुक को दिया, और यह ज्ञान पुनः इसी प्रकार दिया जाता रहेगा। यानी कि ये सृष्टि चक्र की पुनरावृत्ति होती है, चौथे अध्याय में वर्णन है। फिर यह भी कहा अर्जुन तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे सब पता है, तुझे कुछ भी पता नहीं। ये पुनर्जन्म की बात श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय चार में कही गई है। यहाँ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसके कारण मनुष्य मूंझ जाता है, संदेह में घिर जाता है। आगे चौथे अध्याय में ही संभवतया छठा श्लोक है, जब परमात्मा अपना परिचय देते हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, मां के गर्भ से नहीं आता, मेरा तो दिव्य जन्म होता है और मैं अपने वायदे के मुताबिक समय पर आता हूं और समय पर जाकर के वापस चला आता हूं आपको ज्ञान देकर। जब हम एक तरफ पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं उसी चौथे अध्याय में, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, तो कंफ्यूज होता आदमी कि पुनर्जन्म यदि है तो आप आए हो, आते रहोगे, पर यदि अजन्मा हो तो पुनर्जन्म की बात गलत है, होता है ना। अब यहां कौन सी बात सही है, मैं आपसे निवेदन करूं कि दोनों ही बातें सही है। पुनर्जन्म भी होता है और परमात्मा तो अजन्मा है। कैसे? इस सारे रोल में भगवद गीता के ज्ञान में दो प्रकार के पात्र काम करते हैं। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म के शरीर में परमात्मा दिव्य रूप से अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, माना शरीर श्री कृष्ण का, ज्ञान देने वाला अजन्मा परमात्मा निराकार शिव। और ये कई धर्म ग्रंथों में इसकी बहुत अच्छी विवेचना भी कही गई है। मुझे याद आता है तुलसी की वो पंक्ति रामचरितमानस में लिखा है बालकांड में, भिन्न पग चले हूं सुने हूं विनु काना। ये दशरथ का पुत्र जो राम है ना, ये तो मेरा पात्र है श्रीमद् रामचरितमानस का। परमात्मा कौन है, तुलसीदास जी ने वर्णन करा है, यही भागवत जी में वर्णन है, यही श्रीमद् भगवत गीता में है कि मैं तो अजन्मा हूं, मां के गर्भ से नहीं आता। पुनर्जन्म वगैरह होते हैं ये श्री कृष्ण वगैरह के, सबके और देवी देवताओं के होते हैं। और एक और बात देखिए आप, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी श्री कृष्ण वाच शब्द नहीं है, भगवान वाच शब्द है। ये अंतर बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है, ये समझने की बात है। तो बिन पग चले हूं सुने हूं विनु काना, कर बिन कर हूं कर्म विधि नाना। उसके न कान है न नाक है, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। जिसके पास वाणी नहीं है लेकिन उससे बड़ा कोई वक्ता भी नहीं है दुनिया में, ऐसा बहुत अच्छा बालकांड में चौपाई है। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वर्णी। ऐसे उस अजन्मा का वर्णन रामचरितमानस में भी है। कहने का भाव कि जो कंट्रोवर्सीज जो विवाद हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा कि किस रूप में किस रिलेवेंसी को देखते हुए ये सब लिखा गया, उसमें वास्तविकता क्या है। और यही आज पुनः ब्रह्मा कुमारी इसके माध्यम से परमात्मा स्वयं आकर के हम तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म है, वैराग्य है और भक्ति का भी निरूपण है। एक बात बताऊं मैं आपको, भक्ति ज्ञानयुक्त हो तो क्या जीवन में आनंद है। रामचरितमानस में कहा गया कि मनुष्य जब तक श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा यानी भक्ति, विश्वास यानी ज्ञान, दोनों का समन्वय लेकर नहीं चलेगा उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं श्री राम के बारे में, तब वो पहली छुपाई है उसमें, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का श्रवण किया गया है, अर्थात श्रद्धा भी होना चाहिए विश्वास भी होना चाहिए। श्रद्धा यानी भक्ति, विश्वास यानी ज्ञान। यदि केवल कोरा ज्ञान है और हम में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो कोई आनंद नहीं आएगा। केवल श्रद्धा है, विश्वास नहीं है, तो भी कुछ नहीं होगा। आज दुनिया में देखिए क्या होता है, आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, तो कहते हैं पहले हमारे प्रोडक्ट को देखिए, इस पर विश्वास करिए, फिर खरीदिए। परमात्मा कहता नहीं, पहले तू मुझ पे विश्वास कर, फिर देख तू मेरा कमाल। हमें पहले परमात्मा पे निश्चय करना पड़ेगा, अन्यथा कोई प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा में निश्चय बहुत भाग्य से होता है। तो ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में कैसे तपस्या करना चाहिए। तन का तप किसको कहा जाता है, अहिंसा, ब्रह्मचर्य की तपस्या, और हमारा शरीर समाज के लिए हो, जन जन की सेवा के लिए हो, परोपकार के लिए हो, ये तप की पूरी संज्ञा बताई गई है। मन का तप, बहुत मीठा बोलिए, धीरे बोलिए, काम की बात बोलिए, श्रेष्ठ संकल्प करिए, क्योंकि बिना उसके मन का तप नहीं हो सकता है। ऐसे ही वाणी का तप, हम यदि कोई तपस्या करें और दूसरों का अहित हो, वो तामसिक तप कहलाता है, तंत्र मंत्र जंत्र वाला, उसका भी वर्णन है उसमें। हम अपने लिए सेल्फिश होकर करें वो राजस होता है, और दूसरों के लिए करें वो परोपकारी तप होता है, उसका भी बड़ा अच्छा वर्णन है। नवधा भक्ति का बहुत अच्छा वर्णन है श्रीमद् भगवद गीता में, एक से एक बात लिखी गई है। समय मेरा बहुत 5 मिनट ऊपर हो गया है, बातें तो बहुत है, मैं एक बात निवेदन करूं, परमात्मा हम सब प्यारे बच्चों का इतना ध्यान रखता है, सबका, सारी दुनिया के हर मनुष्य आत्मा का, क्योंकि उसी के बच्चे हैं सब। किसी का दुख देख नहीं सकता, हम अपने ही बच्चों का दुख नहीं देख सकते कितने ही खराब हों, तो परमात्मा देख सकता है क्या? नहीं। सिर्फ उस पर विश्वास करके देखो और फिर उसका हाथ पकड़ के चलो, कितना आनंद आता है। हम जब भी गलती करते हैं परमात्मा फिर गले से लगा लेता है, रहमतें तेरी बेमिसाल हैं, करूं किस जुबान से शुक्रिया। रहमतें तेरी बेमिसाल हैं, करूं किस जुबान से शुक्रिया, जब जब भी खता हुई तेने फिर गले से लगा लिया। ऐसा है हमारा परमात्मा। आप देखिए दुनिया में हमको परमात्मा ने सब कुछ दिया है, ये शान, ये शौकत, रहमत, मान, पैसा, इतने अच्छे फील्ड, कितना क्या नहीं दिया, इतनी सुंदर प्रकृति, क्या नहीं दिया, सुंदर बयार, अनूठी सुगंधें, कितनी खूबसूरत प्रकृति है ये। आपको प्रकृति से कितनी प्राप्ति होती है, पर बाहर है मानव। यदि हमारे घर में कोई दो मेहमान आए और बच्चे को टॉफी दे, तो हम क्या सिखाते हैं, बेटे आंटी ने टॉफी दी ना, थैंक्स करो, बोलते हैं ना। पर परमात्मा देखो कितना देता है, पर हम उसका थैंक्स भी नहीं करते, करते हैं कभी, दिल से थैंक्स नहीं करते। थैंक्स करिए, शुक्रिया करिए, यह अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हमारी जिंदगी के 10 साल 20 साल 5 साल बचे नहीं बचे, श्वास का क्या भरोसा, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, जो समय है। मैं एक बात और निवेदन करूं कि हमें कोई संन्यास नहीं लेना है, गृहस्थी में रहना है, कर्म करना है, परोपकार करना है, सब कुछ करना है, सब खाओ पियो मौज उड़ाओ सब करो, किंतु हमारा एटीट्यूड बदलो, दृष्टिकोण बदलो, अभिगम बदलो, विजन बदलो, उसी से सब कुछ चेंज हो जाएगा। और कैसे बदलना है, ये श्रीमद् भगवद गीता और उसका राजयोग सिखाता है। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करें। परमात्मा को हम 2 मिनट बहुत अच्छा ज्ञान भक्ति और वैराग्य के साथ याद करें, उस मीरा के आशिक और मासूक की तरह याद करें, उसका थैंक्स करें कि जो कुछ मेरा है सब तेने दिया है, तेरा बहुत शुक्रिया। मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सॉन्ग बजाएं और उसकी शान के शब्द सुनिए, बहुत आनंद आएगा और दिल से शुक्रिया करिए उसका। थैंक यू वेरी मच, शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, जो इतने अच्छे से और इतने मर्मज्ञ तरीके से हमें गीता का ज्ञान सुनाया। और इस गीता को सुन के सब लोग विनम्र हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोग खड़े होइए और एक दूसरे से हाथ मिलाइए, स्माइल करिए, हाथ जोड़िए, तो ये विनम्रता।